संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की छठवीं गाथा पर चर्चा आरंभ करनी है। पूज्य गुरुदेव श्री जिन छठवीं और सातवीं गाथा को ये कहा करते थे कि इन दोनों में सारा समय सार आ जाता है, यानी समय सार के अध्ययन का जो मूल प्रयोजन है वो इन दो गाथाओं को सही रूप में समझ लिया जाए तो उस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। कुंद कुंदाचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को तुम्हें समझाऊंगा। इसमें हम कोई कर्तृत्व का अहंकार नहीं देखें कि कोई तो किसी को समझा ही नहीं सकता है। पूज्यपाद आचार्य तो लिखते हैं कि भाई मुझे तो समझाने का विकल्प भी नहीं आता। कि क्यों नहीं आता कि जो सामने बैठे हैं, दृढ़ दृष्टि से देखता हूं तो सब ज्ञान के घन पिंड हैं, इन समझ के पिंडों को क्या समझाना। पर्याय की दृष्टि से देखता हूं, ख्याल में आए ना, तो जो आंखों से दिखाई देता है ये तो सब जड़ हैं, जड़ों को क्या समझाना। इसलिए मैं तो अपने में जाता हूं। जिनवाणी के विभिन्न वचन विभिन्न अपेक्षाओं से कहे जाते हैं, जो कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ने में सबसे मजबूत चोट किसी आचार्य ने दी है तो उसका नाम है कुंद कुंद। कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये यदि किसी ने समझाया है तो उनका नाम है आचार्य कुंद कुंद। सोनगढ़ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शासन 74-75 की बात है, और समाज के बड़े बड़े विद्वान आए थे, वहां विद्वत सम्मेलन था। पंडित फूलचंद जी उस विद्वत सम्मेलन के अध्यक्ष थे, मैं संयोजक था। कैलाश चंद जी और जगनमोहन लाल जी मुख्य अतिथि थे। तो कैलाश चंद जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने तो सुना था कि कांजी स्वामी ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं है, निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त खल में है ना, लेकिन हमने तो यहां देख रहे हैं कि इन महापुरुष कांजी स्वामी के निमित्त से 25,000 लोग यहां आए। अब कैसे ये कह सकते हैं कि निमित्त तो कुछ करता नहीं है। मैं संयोजक था तो मैंने वहां कहा कि गुजरात में भयंकर आग लग रही है, उस वक्त बहुत खराब स्थिति थी, जिन लोगों ने उन्हें कल्पना है उसका पता है। ऐसी आग में भी कूद कर ये लोग ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं। क्यों? क्योंकि घर घर जाकर लोगों ने उन्हें बताया है कि एक कांजी स्वामी हैं जो भारत के पश्चिम भाग सोनगढ़ में रहते हैं और वे कहते हैं कि निमित्त करता नहीं है। उनके संदेश को उनके विरोधियों ने जाकर घर घर पहुंचाया और उन सबको ये जिज्ञासा हुई कि हम भी तो सुन के आए कि वे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कि क्या कहते हैं, हम दूसरों के मुख से उनकी बात को क्यों सुने। जब वे स्वयं अभी मौजूद हैं तो वो क्या कहते हैं हम तो उनके मुख से ही सुनेंगे, इसलिए जो हमारे आमंत्रणों से नहीं आए हैं, हमें ना पसंद करने वाले लोगों के आमंत्रण से आए हैं। चल रहे ना, तो कैलाशन जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि वह तालियां भी बहुत पीटी थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुंद कुंदाचार्य देव ने सबसे ज्यादा कर्तृत्व के अभिमान पर चोट की है। आत्मा कर्ता नहीं है, पूरा कर्ता क्रम अधिकार, फिर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में भी वही घोटाई की है। देवी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या एकत्र भक्त आत्मा समझाऊंगा, और समझा दूं तो बेटा समझ लेना, चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। क्या लेकिन मैं तुम्हें एकत्र भक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा, और अपने वैभव से समझाऊंगा, यानी आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, परंपरा गुरु के उपदेश और आत्मा के अनुभव से जो मेरा वैभव उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ ये है कि तुम ये मत समझना कि ये सब मैं अपनी मति कल्पना से कह रहा हूं, कि मेरी उपज है। ख्याल में है ना? तो कहते कांजी स्वामी क्रमबद्ध पर आया, तो कांजी स्वामी की है। वो कहते हैं ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि क्रमबद्ध पर्याय मेरी हो, लेकिन ये तो अनंत सर्वज्ञों के द्वारा बताई हुई है, मैंने तो सिर्फ बताई है, ये मेरी कैसे हो सकती है? ख्याल में ना? ऐसे ही वो यहां कहते हैं कि मैं ये सब आगम के आधार से कहूंगा, एक बात भी आगम के विरुद्ध नहीं कहूंगा। ये उनका ये कहने का आशय ये है कि आगम के सेवन से मेरा वैभव उत्पन्न हुआ है, और मैं जो तुम्हें एक दो आत्मा की बात समझाऊंगा, उस वैभव से समझाऊंगा, माने मैं आगम के विरुद्ध जाकर कुछ कहने वाला नहीं हूं। ये गारंटी आपको दे रहे हैं, और ये बात मैंने अकेले आगम से पढ़कर नहीं जानी है, मैंने उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाण और नयों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह परखा है। ये आगम के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है, आगम की बात को अपनी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बांचना के बाद परीक्षणा और परीक्षाग्ना के बाद अनुप्रेक्षा करने का आदेश आचार्यों ने हमें दिया है। यानी हमारी बात को तुम तरक्की कसौटी पर कसकर परखो, ये खुद सर्वज्ञ भगवान ने अथवा हमारे आचार्यों ने कहा है, और खुद कह रहे कि मैंने इसे अपने तरक्की कसौटी पर कसकर देखा है, और मेरी दृष्टि में वो 100% खरी है। उन आगम की अकेली नहीं है, मैं सिर्फ पढ़कर तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, मैं चिंतन करके इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि यही परम सत्य है, और कोई मेरे चिंतन में कोई गड़बड़ी रह गई हो और आगम की बात समझने में भी कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैंने अपनी आचार्य परंपरा से मिलान करके जो हमारे गुरु हैं उनसे मैंने ये सर्टिफाइड किया है कि महाराज मैं ऐसा समझाऊं ठीक है, क्या मैं ऐसा समझाऊं ये बात ठीक है, यानी मैं वहां से भी प्रमाणित की है, और अकेली ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तरक्की कसौटी पर कसी हुई बात नहीं है, अकेली पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, पढ़ी और सुनी। आगम का सेवन माने पढ़ना, और गुरु का उपदेश माने सुनना, दोनों चीजें शामिल करी ना बराबरी की हैसियत से, और तरक्की कसौटी पर कसना, और फिर मैंने अनुभव की मुद्रा से इसको मुद्रित किया है, मैंने अंदर जाके देखा है कि ये बात जो बताई रही है वो बिल्कुल मेरे अनुभव में आई है, इस तरह ये बात चार छेद में से निकली हुई है। ये बात कहने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? नंद भाई उनमें अनंत श्रद्धा रखने वाले शिष्य सामने बैठे थे, जो उनके मुख से निकलता, जो उनकी लेखनी से लिखा जाता, किसी के चित्त में एक विकल्प की तरंग भी उठने वाली नहीं थी कि ऐसा है या नहीं है। क्यों? फिर भी उनने अपनी इतनी सफाई क्यों दी कि वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कि वो मेरे नाम से नहीं चल सकती। वो बात इतनी अटपटी है और इस जगत के जीवों की मान्यता के इतने विरुद्ध है कि एक एक शब्द में तुम झूठे तुम झूठे तुम झूठे तुम सौदार झूठे ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। मैं अपनी तरफ से कैसे कह सकता हूं, तुम मान ले मैं मनुष्य में झूठे, तुम मान ले मैं गुणस्थान में झूठे, तुम्हारे मानस्थान में झूठे, अभी मैं इतना झूठा झूठा कहने वाला हूं कि ये मेरे नाम से नहीं चलेगा क्या? इसमें सर्वज्ञ की साक्षी मुझे देनी ही पड़ेगी और वो सर्वज्ञ की वाणी को मैंने कैसे अपने तक उतारा है वो मुझे बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात इतनी महान है कि एक कहकर वो अपनी विषय वस्तु की महानता का ज्ञान करा रहे हैं कि तुम इसे हल्के रूप में लेकर नहीं सुनना, तुम मुझे कुंद कुंद की बात समझकर मत सुनना पड़ना, तुम इसे भगवान महावीर की बात सुनकर समझना पड़ना। ये कहना चाहते हैं वो इनडायरेक्ट शब्दों में। और न केवल एक जगह, सौ जगह समय सार में कहा होगा भणिदा खलु सभ्य दर्शी हम जिणे ही निर्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, गुरुदेव की भाषा में कहे तो गणधर देव की उपस्थिति में, सौ इंद्रों की उपस्थिति में, लिंके की चोट तीर्थंकर परमात्मा जो अपनी दिव्य ध्वनि में कह रहे थे, ये वो बात है। ये कांजी स्वामी की बात नहीं है, कुंद कुंद कहते हैं मेरी भी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात की। विशुद्धि लब्धि के संदर्भ में मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि विशुद्धि लब्धि का अर्थ क्या, फिर कसाई की मंदता, लेकिन उस वहां जो टोडरमल जी ने लिखा है मोह मंद हो, दादा क्या लिखा है, तो उसमें पीछे थोड़ा रहस्य है कि अकेली कसाई जो है वो चारित्र मोह है, अकेले चारित्र मोह के मंद होने से तेरे को तत्व की बात समझ में नहीं आएगी, मिथ्यात्व मंद होना चाहिए बसंत भाई क्या, मोह में दर्शन मोह की मुख्यता, दर्शन मोह भी शामिल करना चाहते हैं, कसाई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मोह शब्द डाला उसमें मोह जिनका मंद हुआ है। अब मोह मंद होने का और कसाय मंद होने का अर्थ क्या, जो मैं ये करता हूं वो कहता हूं, वो ये कहते हैं आचार्य कि जो अध्यसना लब्धि में तुम्हें आचार्य देव बताने वाले हैं वो ऐसी बात है कि तुमने आज तक सुनी नहीं है, तुम्हारे चित्त में इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है। मैं अशोकनगर में रहता था करीब 43 साल पहले की बात बोलता हूं, तो एक मेरे श्रोता थे नन्नू लाल जी थे, नन्नू भैया हम उन्हें बोला करते थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया होगा, बहुत बुजुर्ग थे। तो जब भी मैं प्रवचन करता था वो मतलब मेरे कट्टर विरोधी थे और मेरे अलावा किसी का प्रवचन उन्हें पसंद नहीं आता था, सच बोलता हूं एकदम। तो वो ये कहते थे ये बात तो हमने कहीं देखी ही नहीं, आज तक पढ़ी नहीं, तो उनका एक परमानेंट शब्द था जो उन्हें सैकड़ों बार दोहराया, और मेरा उनके प्रति परमानेंट एक उत्तर था जो मैंने सैकड़ों बार बोई का बोई दोहराया कि इसमें मेरी क्या गलती है, यानी आपने नहीं देखी, आपने नहीं पढ़ी, आपने नहीं सुनी, इसमें मेरी क्या गलती है। देखो ये शास्त्र ने लिखी है ना, अब आपने नहीं पढ़ी तो मेरी क्या गलती है महेंद्र महेंद्र कुमार जी, ये तो आपका अज्ञान प्रदर्शित हो रहा है और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, और फिर आपने कितने शास्त्र पढ़े जो आप ऐसा कह सकते हैं मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ी है, क्यों कितने शास्त्र पढ़े। अरे गुरुदेव जैसे लोगों ने जो सारी जिंदगी एक एक समय इसमें ही लगाया, वे भी नहीं कह सकते हैं इस पंचम काल में कि मैंने सब कुछ जान लिया और सब कुछ देख लिया, तो सर्वज्ञ हो जाते ना, ना मैं केवली हूं ना मैं श्रुत केवली हूं, आगम की कोई बात है, अपार है आगम, अपार शब्दम किल शब्द शास्त्रम क्या बुद्धिश्च अल्पा, और क्या है शब्द शास्त्र अपार है, बुद्धि अल्प है, विघ्न बहुत हैं, इसमें बाधा बहुत उपस्थित होती हैं, है ना। इसलिए मैं कब कहता हूं तो वो कहते हैं कि अब यदि तुमको दिख रहा है कि शास्त्र की बात है तो इस पर गंभीरता से विचार करो, मेरी बात नहीं है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मंत्र विशुद्ध लब्धि में कि तुमने आज तक जो भी मान रखा है, जो भी समझ रखा है, हम हर बात को ये कहने वाले हैं कि ये झूठ है। और ये सुनना मोहमंद और कषाय मंदता के बिना संभव नहीं है। हमारी कैसी आदत है ना, ये जो माताएं बहनें हैं ना, एक सास और बहू मंदिर में रोजाना मिलती हैं, उनकी दोनों सास बहू एक ही नहीं, किसी की सास और किसी की बहू, समझना, और उनका संवाद होता है। तो वो जो सास नाम का प्राणी है ना, वो बहुओं की आलोचना करती है, बहू आजकल की ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो वो जो दूसरी बहू है ना, वो समझती है कि मेरी बात नहीं तो इसकी बहू की बात है। तो सत्य दर्शन ठीक कहती हूँ, अम्मा जी आप ठीक कहती हो, ठीक कहती हूँ, ठीक कहती हूँ, लेकिन सासें भी ऐसी हैं, और फिर वो सासों का बखान करती है। तो अम्मा जी कहती है इसकी सास की बात है मेरी नहीं है। तो वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब तक एक दूसरे का समर्थन नहीं करें तो उनका संवाद चल नहीं सकता। क्या तुम कुछ भी कहो अनाप शनाप और हम इतना नहीं कहें कि ठीक है तो संवाद आगे बढ़ नहीं सकता। टोडरमल जी इसके बहुत माहिर थे, इस मनोविज्ञान से बहुत बड़े घने परिचित थे। तो वो हर प्रश्न के जवाब में तुम ठीक कहते हो लेकिन कितनी भी गड़बड़ बात कहे क्यों उत्तर दे जी। देखो पहला वाक्य तुमने कहा सो ठीक क्यों, तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसको ठीक ठीक सुनने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि वो कहे और तुमको गलत, किसे बुलाया इसने, कौन बुलाया, कौन कह, अगले परिसर में से किसी को नहीं बुलाना, मेरे से पूछे बिना किसी से बात नहीं करना, हमको मूर्ख समझता है, हमको समझते नहीं। आज तक पंडित तो आए हमको ये कहते रहे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, नेता आता कुछ भी ठोकता, हमारे लोग कहते हैं ना अरे आप इतना जैन धर्म जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने मालूम क्या जैन धर्म सुनाया था, भगवान महावीर ने कहा कि पाकिस्तान यदि हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कहा था नेताजी ने। और हमारे हम लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, अरे साहब आपको इतना गहरा अध्ययन है भगवान महावीर का हमें पता ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं भाई कि हम जो कहने वाले हैं तेरी जो मान्यता है आज तक की वो एक एक झूठ है। तू कहने वाला है हमने ये किया, तूने कुछ किया ही नहीं, तूने कहा मैंने ये त्याग दिया कि आत्मा त्याग उपादान शून्य तो शक्ति से युक्त है। हम ये कहने वाले हैं, बोल हम तेरी किसी बात का भी समर्थन करने वाले नहीं है। अब बोल तेरे को सुनने की ताकत है और हर बात पे अंदर से हकार आए प्रमाण वचन गुरुदेव तो तेरे को विशुद्धि लब्धि है। ये विशुद्धि लब्धि की शर्त ये है कि मुनिराजों की जो आहार के दान की में नवदा भक्ति होती है वो क्यों होती है, महाराजों को नौ दफे नमस्कार करवाने का शौक नहीं है, लेकिन अब उन्हें तो पता ही नहीं है कौन का घर है, कैसा घर है, शुद्ध आहार है, अशुद्ध आहार है, देनी है, अदेनी है, तो उनके पास क्या उपाय है कि इसका घर भोजन करने लायक है। तो जो नवदा भक्ति करेगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये देनी है, ये मुनियों को आहार देने की विधि जानता है, इतना भरोसा तो होगा। तो इसने जो आहार जल शुद्ध कहा है वो बाद में भी दम है, वो नवदा भक्ति से ये घर आहार देने लायक है इसका निर्णय करते हैं। यदि उसमें कसर है चलो महाराज आ जाओ बढ़िया रोटी बनाइए तो वे नहीं जाएंगे, क्यों समझ गए ना आपकी में, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है महाराजों को आहार कैसे दिया जाता है, महाराज माने क्या होता है, ये ऐसे बात करता है जैसे हम इसके दोस्त हों, ये तो हमारे गले में हाथ डालना चाहता है क्यों। उसके पीछे कोई मान अभिमान की बात नहीं है, तो वो देशना लब्धी वो कहते हैं कि हम जो कहने वाले हैं वो भजन तुम भगवान महावीर की वाणी समझकर सुनना बेटा, कुंद कुंद की नहीं समझना। अरे कुंद कुंद से लेकर आगे तक सभी, और मैं तो कहते ऊपर तक गणधर देव तक, क्यों? वो ये कहते हैं कि ये भगवान महावीर की वाणी है। बस प्रमाण तो हमारे यहां एक सर्वज्ञ परमात्मा है जिसकी दिव्य ध्वनि खिली, बाकी सब ज्ञानियों गणधर देव से लेकर चौथे गुणस्थान वाले तक, मैं तो कहूंगा गणधर देव से लेकर गुरुदेव तक, सब ज्ञानियों की बात उस सर्वज्ञता के आधार पर, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है उसके आधार पर प्रमाणित है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, ये तीन शर्तों की जरूरत है। लेकिन कोरी बातें ही बातें ना हो इसलिए वो आत्मानुभव की शर्त लगाई है। और वो कहते हैं कि अभी ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं हाथ जोड़ता हूं, लेकिन छल नहीं कहना। तो ये कहकर वो अपनी बात को तुम कितनी गंभीरता से सुनना इसके लिए कह रहे, इतना अपने कर्तृत्व का अभिमान पोषण करने के लिए नहीं कह रहे, है ना? और ना तुम्हें उन्हें तुमसे माफी मांगने का कोई विकल्प है, अपने यहां तो कितना स्पष्ट है। खामैमी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें, आया ना, मैं सब जीवों को माफ करता हूं और सब जीव मुझे माफ करें। ये पागल हो गया, मैं सब जीवों को माफ करता हूं, कोई तुमसे माफी मांग रहा है? ये कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर तुमसे कब माफी मांगने आए थे? बस अभी तक मियां मिट्टू बने, मैं सबको माफ करता हूं। अरे माफ करता हूं का अर्थ है उसके प्रति जो मेरे हृदय में क्रोध भाव है, मेरे हृदय में जो देश भाव है, मैं उसका परित्याग करता हूं, ये अर्थ है। वो उसके परित्याग करने के लिए मैं किसी के पराधीन नहीं हूं। यदि जो माफी मांगे उसे ही माफ करने की बात होती आगम में, तो फिर जो सैनी पंचेंद्री मनुष्य हमारे सामने हैं बस उनसे ही हमारा ये बात होती। सब जीवों को माफ करता हूं, माफी मांगता हूं का मतलब कहां होता? ये संवाद वाली बात नहीं है क्या? दोनों की उपस्थिति जरूरी नहीं है? ये आहार दान और ज्ञान दान नहीं है? आहार दान में एक लेने वाला चाहिए देने वाला चाहिए, माल भी चाहिए। ज्ञान दान में भी एक लेने वाला चाहिए एक देने वाला चाहिए, माल भी चाहिए। ये दान नहीं है, ये तो त्याग है कि मैं मेरे हृदय में जो द्वेष भाव है मैं उसका परित्याग करता हूं, बिना किसी अपेक्षा के कि वो अपनी, यदि वो माफी मांगकर अपनी मान कषाय का त्याग नहीं करना चाहता है तो मैं अपनी क्रोध कषाय को रखने के लिए बाध्य नहीं हूं, बिना उसके भी मैं अपनी क्रोध कषाय का परित्याग कर सकता हूं। मेरा जीव मोक्ष कैसे जाते? और फिर कहते हैं मैं सब जीवों की माफी मांगता हूं, तो मक्खी मच्छर से माफी मांगते हो? क्यों नहीं मांगूंगा? मैंने उनके प्रति अपराध कम किए हैं क्या? एक मच्छर ने हमें काटा, हम दम से ऐसा लगाया, उसने बेचारे ने कितना आपका खून पिया था? एक बूंद, अरे एक बूंद के भी 1/4-5 पेट कितना है उसका, तो क्यों पिया था? तुमसे उसका बैर था, उसे बेचारे को पेट भरना था ना, तो उसकी खेती होती है ना, धंधा है ना, दुकान है ना, नौकरी है, क्यों? यहां जहां है यदि पेट नहीं भरेगा तो मर जाएगा। उसकी तो वो मजबूरी है कि जहां से उसको जो कुछ भी मिले सिर्फ इतना सा चाहिए, कितना? 2 रोटियां नहीं चाहिए। तूने उसके बदले में उसका अपना खून निकाल दिया, उसका खून निकाल दिया, उसकी जान भी निकाल दी, तूने कम अपराध किया है उसके प्रति? एक ककड़ी के चोर को कटार की सजा नहीं है? अरे इतनी नहीं महन को आजी आदमी जी, के आजकल मच्छर बहुत हो गए, वो डीडीटी छिड़कने वाले को बुलवाओ ना, अपने घर में सब बिल्कुल डीडीटी छिड़कवा देते हैं। मैंने एक मच्छर ने तेरे को क्या काटा, घर में एक मच्छर जिंदा नहीं रहना चाहिए, उनके कुल के कुल तू नाश करेगा। बाकी मच्छरों ने तेरा क्या किया भैया, ये तो दोनों आत्मा पृथक पृथक है ना, और तू जिद्दी चीज छिड़कवाएगा तो अकेले मच्छर मरेंगे, मक्खियां नहीं मरेंगी, कॉकरोच नहीं मरेंगे और कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे, कितना अपराध किया तूने, बिना उनके कोई तेरे से अपराध किया, उनने तो नहीं काटा था ना तेरे को, और दुर्भाग्य से यदि म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष हो गया तो पूरे जयपुर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, समझ में है ना, और मुख्यमंत्री हो गया तो पूरे प्रांत में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, और महादुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हो गया तो पूरे देश में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, और महादुर्भाग्य से अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया तो विश्व के किसी कोने में मच्छरों को जगह नहीं मिलना चाहिए, क्यों पता। एक वकील साहब थे अपने विदिशा में, नंद किशोर जी नाम था, और गुरुदेव के प्रतनों में बहुत जाते थे हमेशा, बहुत मतलब, तो वे म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए विदिशा में। अब उनके पास वो फाइल आई दीदी दी छिड़काने की सारे विदिशा में, तो उन्होंने कहा मैं तो इसका साइन नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, अध्यक्ष के साइन के बिना दीदी छिड़की नहीं जा सकती, कि मैं तो नहीं करूंगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब इसमें प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे नहीं बनाना बनाना बोला। ऐसे भी अपने मुखियों में थे क्या कि मुझे नहीं, मैं इतने मच्छरों को मारने का आर्डर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो उन मक्खी मच्छरों के प्रति भी हमने बहुत अपराध किए हैं, तो उनसे हमें माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कि साहब बेचारे समझते ही नहीं है, क्यों कि बेसमझे कि नहीं समझे, लेकिन तूने अपने अपराध को स्वीकार करके अपने चित्त को तू निर्मल कर ले, है ना, अपने प्रतिक्रमण में यही तो है ना, खामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, ख्याल में आई ना, मिट्टी में सभ्य भूदेशु, क्यों सब जीवों से मेरी मित्रता, मित्रता माने मित्रता नहीं जिसे आप मित्रता समझते हो, क्यों वो पंडितों की कहानी आती है ना कि चार विद्वान बनारस से पढ़ के आए थे और अपने घर जा रहे थे, तो हर बात वे शास्त्र में देख के करते थे, माने जो शास्त्र का ज्यादा ज्यादा उदाहरण देते हैं ना हर बात में, उनकी मजाक उड़ाई है उस कहानी कहने क्या जसन भाई, हर बात में शास्त्र, हर बात में शास्त्र, तो उनकी मजाक उड़ाई है। तो वो जा रहे थे रस्ते में, तो अब कहां जाना चाहिए, दो रस्ते आ गए, तो इधर जाना क्या इधर जाना, तो कहा शास्त्र खोलो, किसी से पूछे नहीं, ग्वालों से क्या पूछे, हम तो पंडित हैं, हम तो शास्त्र में देखेंगे, किसी ग्वाला था ना पूछ लेते कि हमें कोटा जाना है कौन सा रास्ता है, नहीं तो शास्त्र में लिखा था तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना नेकोर मुनिर्यस्य बच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहित गुफायाम महाजनो येन गता सपन्था। कहां लिखी है कहानी मालूम आपको, विश्व के सबसे अधिक बिक्री वाले ग्रंथ में 105 भाषाओं में जो छपा है, हिंदुस्तान की सर्व अधिक प्रचलित लोकप्रिय कृति, नाम सुना पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, क्या अर्थ है जो मैंने बोला, तर्को अपने अष्टश्री में उद्धृत है, जो अष्टश्री पढ़ते तुम्हारे है कोर्स में किसी के आचार्य के में है ना, नहीं पढ़ते हैं 10 नंबर की है, नहीं पढ़े काम चला लेते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना, तर्क अप्रतिष्ठित है, क्यों अप्रतिष्ठित है कि जो ज्यादा बुद्धिमान होगा ना वो कम बुद्धिमान को भरा देगा, अपनी झूठी बात भी सिद्ध कर देगा, क्यों है ना, इसलिए तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है वस्तु के स्वरूप के निर्णय में, इसलिए कौन सा रास्ता होगा ए होगा कि ए होगा, ये तर्क करने से काम नहीं चलेगा, श्रुति और विभिन्ना और शास्त्र बहुत हैं, एक शास्त्र कहता ये ऐसा ही है, एक शास्त्र कहता उसके विरुद्ध सही है, एक कहता ये सही है, एक कहता ये सही है, कोई कहता पूरम में है कोटा, कोई कहता है पश्चिम में है कोटा, अब जयपुर वाला मालक पूरम में कहेगा तो कलकत्ते वाला पश्चिम में कहेगा कि नहीं कहेगा, अब शास्त्र बहुत अलग अलग है और उनमें कुछ कन्फ्यूजन बहुत है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना नेकोर मुनिरयस्य वच प्रमाणम। ऐसा एक मुनि नहीं है कि जिसकी वाणी को हम प्रमाणित मान लें, क्योंकि सब मुनि एक दूसरे को झूठा कहते हैं। ये मुनि अपने मुनियों की बात नहीं है, कुंद कुंद अमृतचंद की बात नहीं है, और आज के जो अपने मुनि है उनकी बात भी नहीं है। ये कपिल मुनि, सांख्य के मुनि, बात सुनिए ना, वे मतलब जो धर्म है ना उनकी बात है। आता ना कल्पो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमाण, सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमाण, नेकोर मुनिरयस्य वच प्रमाणम। तो तत्वस्थ धर्मस्थ तत्व नहीं था गुफायाम, धर्म का तत्व गुफा में प्रवेश करके अंधे अंधे में चला गया है। अब क्या करें, हमारी तो समझ में नहीं आता कौन से रास्ते पर जाए, माने हम धर्म कौन सा धारण करें, कौन से रास्ते में जाए, माने धर्म का रास्ता। तो उसका जवाब दिया महाजन, ओ एन गता सपंथा। जो ज्ञानी धर्मात्मा, महाजन माने महाजन, महांतस जना माने ज्ञानी धर्मात्मा, जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से जाना चाहिए। महाजनो ये न, तो महाजन का अर्थ क्या है, सर्वज्ञ भगवान से लेके ज्ञानी धर्मात्मा तक, ये महाजन है। और राजस्थान में महाजन किन्हें कहते हैं, सूदखोरों को, क्यों? तो एक व्यापारी मर गया था, तो उसकी अर्थी जा रही थी, उस अर्थी में बहुत महाजन आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि महाजनो एक गथा सा पंथा, जहां से महाजन लोग जा रहे हैं उस तरफ चले जाना, ये रास्ता है, इसलिए अपन इनके साथ चलो। तो उनके साथ चल दिए, क्या है? उनके साथ चल दिए तो कहां पहुंचेंगे, मसान में पहुंच गए। अब वहां एक गधा रेंक रहा था, उसने लिखा है, मैं पूरी नहीं सुनाऊं क्या, यही ताकत एक गधा रेंक रहा था, उसने कहा ये कौन है, तो पोथी खोल क्यों? तो पोथी में लिखा था, दुर्भिक्ष में, मसान में, युद्ध में, दो पांच जगह लिखी थी, इस मसाने से यह तिष्ठति से बांधवा, इनमें जो तेरे साथ खड़ा रहे वो तेरा भाई है, युद्ध के मैदान में जो तेरे साथ खड़ा रहे, संकट में जो तेरे साथ खड़ा रहे, तेरा दिवाला निकल गया हो तो तेरे साथ खड़ा रहे, माने संकट में साथ नहीं छोड़े। आप सुने ना, समृद्धि में तो सारी दुनिया आगे पीछे चक्कर खाती है, लेकिन संकट में जो साथ रहे वो मित्र है। तो ये गधा यहां पर, हम संकट में फंस गए, कहां आ गए मसान में, अब रास्ता दिखता नहीं है, तो ये जो संकट में हमारे साथ खड़ा है, इसलिए ये हमारा मित्र है, तो उसके गले लगने लग गए। ऐसा मित्र नहीं समझना, थोड़ा और बता दूं आगे, एक कदम आगे और बता दूं, एक कहते बता दो। फिर वो एक नदी के किनारे पहुंचे, कुछ लिखा है शास्त्र में लिखा है, एक नदी के किनारे पहुंचे, और नदी के किनारे में वो पार हुए, पार होना चाहते थे, तो इसमें एक पार हुआ तो वो डूबने लग गया, घुसते से डूबने लग गया, तो दूसरे ने फटाफट उसके चोटी पकड़ दी। पहले पंडितों की लंबी लंबी चोटी होती थी ना, महिलाओं के जैसे बाल होते, ऐसी चोटी थी उसकी, तो उसने उसकी चोटी पकड़ ली और कहा अब क्या करना चाहिए के सास देखो के सास देखो, तो फटाफट शास्त्र खोला गया, तो उसने लिखा था सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। यदि सर्वनाश का मौका आ जाए, यदि सब चीज नष्ट हो रही हो, तो पंडित लोग आधे को छोड़ देते हैं, आधे को बचा लेते हैं। अब व्यापारी लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, सारा पैसा डूब रहा हो, क्यों वो 50% में समझौता करता है, तो आनंद भाई निपटाते हो कि नहीं निपटाते हो, और खुश होते हो कि 50% आज का मुनाफा हो गया, 60% जा रहा था, क्यों 10,000 नगद ले गया था, ब्याज व्याज तो दूर, अब आज कहता सेठ जी 5,000 है, ले तो ले लो, नहीं तो फिर क्या करूंगा भैया, तो आज कहते 5,000 कमाए मैंने। तो सर्वनाश समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडिता, तो इसका सर्वनाश आ गया है, तो अपन को आधा छोड़ देना चाहिए, आधा रखना चाहिए, तो गर्दन से काट दिया। बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी लिखकर वो लेखक क्या बताना चाहता है, कि शास्त्र का तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसके बाद अपना विवेक भी है, युक्ति का अवलंबन भी है, समझे ना, परंपरा गुरु का उपदेश भी है और अनुभव भी है, अकेले शास्त्र के लकीर से नहीं, ऐसा करोगे तो ये दुर्दशा तुम्हारी हो जाए, ये बताना उनका उद्देश्य है क्या। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतनी ईमानदारी से कह रहे हैं कि ये बात जो तुम्हें बता रहा हूं वो इतने लोग उसके साथ में हैं, अकेले पंडित टोडरमल को या आचार्य कुंद को या स्वामी जी को नहीं समझना। ये आगम का सेवन मैंने पूरा आगम इसके साथ है, युक्तियों का अवलंबन मैं पूरी युक्तियां इसके साथ में है, पूरी आचार्य परंपरा इसके साथ है ना, और अनुभव इसके साथ है। तो मैं कहूंगा और तुम छल ग्रहण नहीं करना। अब देखिए, अब अगली छठवीं गाथा की जो उत्थान का लिखी उसमें क्या लिखा, कोसौ शुद्धात्मा इति चेत, क्या अर्थ है इसका, वह शुद्धात्मा कौन है ऐसा यदि कोई पूछे, इति चेत, इति चेत का अर्थ क्या होता है, न्यायशास्त्र पढ़ने वाले सब जानते हैं ना, तथा ही का क्या नक्की है, तथा ही इति चेत तदप्य सत, एक बात के नक्की है बिल्कुल, जो न्यायशास्त्र वाले उनको बहुत परिचित हैं, हजारों बार आते हैं कदम कदम पर, इति चेत माने ऐसा यदि कोई कहे, माने कोई कह नहीं रहा, वो अपने ही मन से उस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं क्या। आचार्य कहते हैं कि कोई यदि ऐसा पूछे कि जिस शुद्धात्मा की तुमने हमें बात करी है वो शुद्धात्मा कौन है, तो उसके उत्तर में ये छठवीं गाथा है, किरण भी हो दीप मत्तो नामत अपमत्तो जान गो दिजो भावो एवं भणंति शुद्धम प्रादो जो सो दिशो चैवे। वह ज्ञायक भाव ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, आज ठिकाना है कुछ क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। एक मिनट पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकत्व भक्त आत्मा बताऊंगा, उनने तो क्या प्रतिज्ञा की थी, पहले तो कह दिया के लिए एकत्व की, फिर बीच में विभक्त महाराज जुड़ गए, फिर एकत्व भक्त हो गए, और अब शिष्य शुद्धात्मा कौन है, ये पूछता शिष्य कि एकत्व भक्त आत्मा कौन है, न्याय की बात ये थी ना कि हम जो समझाने की प्रतिज्ञा की वही पूछना चाहिए ना, तो शिष्य पूछता है कि शुद्धात्मा कौन है, तो वे तो ये बताते नहीं है शुद्धात्मा कौन है, वे बताते हैं जो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, ऐसा ज्ञायक वैज्ञानिक, अभी तुमने नया तीसरा शब्द ठोक दिया ज्ञायक बात, अभी शुद्ध की बात नहीं करते, एकत्व बोलते थे फिर एकत्व भक्त बोलते थे, फिर क्या बोल दिया शुद्ध, और फिर ज्ञायक भाव कह दिया, और फिर क्या एवं, अब देखो क्या है ये शब्द एकार्थवाची है, शब्द कौन शुद्ध है, ज्ञायक भाव है, एकत्व भक्त आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम पारणामिक भाव है, परम शुद्ध परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय है, ये सब एक है। गुरुदेव तो 100 से ज्यादा गिनाते थे ऐसे नाम, लेकिन फिर अमृत चंद्राचार्य ने वहां तो इतनी लंबी एकत्व भक्त की बात करी और यहां शुद्ध ऐसा हेडिंग क्यों लिखा, क्यों संजीव, क्योंकि एवं भणंती शुद्धम गाथा में ऐसा लिखा है, तीसरी पंक्ति में देखो एवं भणंती शुद्धम, उसे इस प्रकार शुद्ध कहते हैं, तो जब उत्तर में ये आ रहा है कि शुद्ध कहते हैं तो उन्होंने प्रश्न में वही डाल दिया कि शुद्ध किसे कहते हैं, समझे ना, समझ गए आप, क्योंकि उत्तर में अगली गाथा में ये आ रहा है, प्रतिज्ञा तो की थी एकत्व भक्त आत्मा की और वे क्या कहते हैं एवं भणंती शुद्धम, तो इसको उसको शुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं, अभी मैं इसका अर्थ करूंगा बाद में, इस प्रकार शुद्ध कहते हैं और वो तो जो है सो है, तो इन्होंने गायक भाव डाल दिया, तो फिर पारणामिक भाव क्यों नहीं, परम पारणामिक भाव क्यों नहीं, क्यों कि पारणामिक भाव और परम पारणामिक भाव भी छह द्रव्यों में होता है, उद्गल में भी होता है, कारण अनुभव किसमें नहीं होगा। तो हमें तो आत्मा की बात करनी है। यद्यपि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव रूप है, ये परम सत्य है, लेकिन परम भाव जो पारिणामिक भाव शब्द है वो छह द्रव्यों में प्रयुक्त होता है, तो अकेले आत्मा में नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने उसकी जगह ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग किया। अब शुद्ध क्यों किया, ज्ञायक भाव क्यों किया, आप समझे ना। तो परम पारिणामिक भी क्यों किया, क्योंकि वो जीव भी है ना, माने वो द्रव्य भी है ना, आप समझे ना, द्रव्य है इसलिए पारिणामिक भाव और जीव है इसलिए ज्ञायक भाव, समझे ना, दोनों क्वालिटी उसमें है, लेकिन उसकी पहचान ज्ञायक भाव से होगी। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमने पूछा है वो क्या है, मतलब तुम बोलते वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, ये नहीं है नहीं है वाली बात क्यों कहते, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है क्यों, ऐसे उसमें लिखा है नेति नेति जाहि वेद बखानत हैं, क्यों उनके यहां लिखा है ना सिद्ध ब्रह्म के लिए कि ब्रह्म में वेद ऐसा कहते हैं कि ना इति ना इति, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। और पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी लिखते हैं न तथा न तथा न तथा न तथा, अब न तथा में उसमें क्या है, उसमें क्या फर्क है बोलो, नेति नेति और न तथा में क्या फर्क है, न तथा न तथा। तो कहते हैं कि निश्चय नय की विषय वस्तु कौन से शब्द से बाच्य है, तो वो कहते हैं न तथा शब्द से बाच्य है, न तथा शब्द से बाच्य माने ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है, कैसी के क्या बताएं है हम, तो एक कैसी नहीं है वो समझ लो क्या, ना तथा माने अरस अरस, रस रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, पुद्गल रूप नहीं है, राग रूप नहीं है, द्वेष रूप नहीं है, 29 भावों रूप नहीं है, ये अभी बताने वाले ना 29 भाव आएंगे ना, कहां से कौन सी गाथा में उन, हाँ पदा से पद में गाथा था वो अगर जीव वर्ण आदि से और गुणस्थान पर्यंत जो भाव है ना 29 प्रकार के, वो नहीं है नहीं है नहीं है, एक पूरे जीवाधिकार में रटन लगाएंगे कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, अरसमरूप अंगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समद्धम, ये सब 49वीं गाथा में कहा ना, तो ये ना है ना है ना है, क्योंकि वो है वो स्वाद का विषय है, वो वाणी में बहुत आता ही नहीं है, आता तो बहुत इशारे से आता है क्या, तो फिर ये ना तथा से काम कैसे चलेगा, कहते बहुत क्यों नहीं चलेगा, क्यों जिस जिस जीव को इसने भगवान आत्मा मान रखा है बस वो नहीं है, वहां से तो हटेगा इसका उपयोग क्यों, बोलो मैं पूछता हूं कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको अजमेर जाना है, तो एक आदमी आपको ये बता देगा कि ये अजमेर का रास्ता नहीं है, तो अजमेर का रास्ता कौन है, कभी दे नहीं जाता हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नहीं है ये बात पक्की है, ये तो दिल्ली जाता है क्यों, तो आपने उसका कुछ ने आपका काम किया कुछ क्या नहीं किया बोलो, कम से कम आगे कदम बढ़ाने से तो रोक दिया, अब फिर पीछे कहां जाना है अब तुम दोबारा निर्णय करना, तो उसने कुछ भी काम नहीं किया ऐसा नहीं है, शरीर नहीं है स्त्री नहीं है पुत्र नहीं है मकान नहीं है जायदाद नहीं है रूप नहीं है रस नहीं है गंध नहीं है राग नहीं है द्वेष नहीं है मोह नहीं है क्यों है? क्यों, तो वो कहते हैं कि न प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, यहां भी वही शुरू किया, अब ये दिख कहते हैं कि अप्रमत्त किसे कहते हैं ये समझो, अप्रमत्त किसे कहते हैं, हमें गले में ये मर दिया, टीका मालूम काय को कहते हैं, इसी का नाम टीका है, क्या उनने लिख दिया प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, अब टीकाकार की जिम्मेवारी है प्रमत्त अप्रमत्त को समझाए, और फिर वो ये कहेगा ये नहीं है ये नहीं है ये समझाने के लिए उन्हें समझा समझे ना, कि क्या नहीं है आत्मा, तो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, तो जैसे हमारे लिए तो आत्मा से भी ज्यादा अपरिचित शब्द प्रमत्त और अप्रमत्त है, असलियत में बात ऐसी है कि कुंद कुंदाचार्य देव छठ में साधनी गुणस्थान की भूमिका में झूलते थे, वो झूलते थे पर झूलने शब्द बोलने से भी समझना कि अपने घर से झूलते रहते होंगे, वो तो ऐसे स्थिर रहते हैं और उसमें छठवा और सातवा हो जाता है और उसको ही झूलना कहते हैं, अब हम क्या करें, हमने झूलना ऐसा ऐसा देखा
हम ऐसे झूलते रहते होंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। माने सातवें में चले जाते हैं आप, अठवें में आ जाते हैं, सातवें में चले जाते हैं, छठवें में आ जाते हैं, आप समझिए ना, ये इतना अर्थ है। तो वो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। तो अब कुंद कुंद आचार्य कौन से गुणस्थान वाले हैं? छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। तो अब वे चूंकि दोनों में झूलते हैं एक एक क्षण, अभी क्या बताएं? गुणस्थान पर क्लास ले सकते हैं अन्ना जी 15 दिन, लेकिन एक गुणस्थान वाले को ये नहीं बता सकते थे अब ये छठवें में, अब ये सातवें, मोटा मोटा बता सकते हैं कि उपदेश दे रहे हो तो छठवें में है, ध्यान कर रहे हो तो ये तो कैसा है, ये तो शास्त्रीय है, माने प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्या है, क्या बोलते हैं, थोरिकल, कोरी थोरी समझाई है। अभी वो ऐसा है कि आहार भी ले रहे हैं और सोती शुद्धोपयोग में चले जाए बीच में, क्यों वो प्रवचन के बीच में भी शुद्धोपयोग में चले जाए। अपने गुरुदेव क्या नहीं देखते थे अपन कि किस तरह से एकदम मग्न हो जाते थे अंदर, और अपने जो पूजा करते हो ना आप रोजाना, तो उसमें कहता है कायो सगम करोमि, हम क्या करते हो उसमें, नौ दफे नमो का मंत्र पढ़ने लगते हो, ये तो क्या करे, तो कोई समझता नहीं है, कुछ तो आचार्य ने पकड़ा दिया खिलौना, पढ़ो ये खिलौना न पढ़ो नमो का मंत्र। तो क्या है उसका अर्थ कुमार जी? उसका अर्थ ये है कि अब मैं आत्मा में जाता, वो भगवान की भक्ति करते करते वो अपने आत्मा में चला गया कुछ क्षण को, और फिर आकर उस उपयोग में आया, समझ लीजिए उसका नाम कायोत्सर्गम करूंगी है। अब ये कायोत्सर्ग की इतनी मट्टी पलीत की है हमारे जैनियों ने, क्या कोई एक सवासन होता है ना जिसका नाम है सवासन, सवासन माने बिल्कुल मुर्दा जैसा, उस मुर्दा जैसे को कायोत्सर्ग नाम दे दिया। अमित जी का बहुत नाराज हो जाते हैं, अब वो साधारण लोग नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, है ना? क्या है? अब किया उन्होंने, अब क्या कर रहे उसका, इतने मतलब इतना धर्म का महान शब्द है, जो आत्मा के अनुभव का शब्द है, और उसको वो सवासन के रूप में ये कर दिया, और ऐसे एक शब्द ने कई शब्दों की ये दुर्दशा की है। अब ना अनुप्रेक्षा होती है ना, अनुप्रेक्षा तो बार है भावना, और प्रेक्षा वो ध्यान, ध्यान के पहले हो वो अनुप्रेक्षा, उसी बात का अकलंग देव ने लिखा है दादा कि जब वो चिंतनात्मक होता है तो बार भावना अनुप्रेक्षा कहलाती है, और जब वो ज्ञानात्मक हो जाता है तो वो ध्यान कहलाता है। चीज वो ही है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चिंतन में है तो अनुप्रेक्षा, और ज्ञानात्मक मतलब चिंतन खत्म हो गया, प्योर ज्ञान में रह, अकेला ज्ञान रह गया तो ध्यान, ध्यान उसे बोलते हैं, धर्म ध्यान बोलते हैं, परिभाषा दी है अकलंग देव ने। और मैंने कौन सी किताब, क्रमर पढ़ाई किताब में 12 भावना अनुप्रेक्षा मेरी किताब है ना, उसमें मैंने दिया है, कोट किया है। तो ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त शब्द माने क्या, तो छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत, और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। अब जैसे वो कल आई थी ना तीव्र कषाय में होता है छठवां गुणस्थान, अब ऐसे ही उसका नाम प्रमत्त माने होता है प्रमादी, आलसी, फिर झगड़ा खड़ा हो जाएगा अभी यार, कि तुमने कह दिया तीव्र कसाई मुनराज को छठवें गुणस्थान वालों को, और फिर यहां कह रहे होगा कि वो क्या है प्रमादी। तो प्रमत्त का अर्थ क्या, अप्रमत्त का अर्थ क्या, अपन समझ आलसी है, कुछ नहीं है देखो, और दूसरे कहते हैं इनको तो आलस तो है ही नहीं, घोड़े जैसे दौड़ते हैं, हर काम बिना चैन नहीं पड़ती है, अब हर काम अप टू डेट चाहिए, क्यों आलोक जी? तो बिल्कुल आलस नाम की चीज तो हमने इनमें देखी नहीं कभी, भी अप्रमत्त हो गए। अब वो कह रहे जो मुनिराज उपदेश दे रहे, आहार कर रहे, विहार कर रहे, वे प्रमत्त, और जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, समझ गए ना आप, आत्मा में गए हैं जो वो अप्रमत्त। हम दौड़ने भागने वाले को अनालसी कहते हैं, और क्यों अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसे भी लोग हैं जगत में, ऐसे भी लोग हैं जगत में,
मैं पारोली में था ना, तो मुझे कहा सोता था, फूफा जी थे आप जानते हैं,
तो वो बस मस्त रहते थे, कुछ जिंदगी में काम नहीं किया। वो कहते थे कि जब तक बाप जिंदा था बाप करता था मेरा काम, और फिर जब बाप का स्वर्गवास हुआ तब तक मेरा बेटा हो गया था सब काम संभालने लायक। वो बेटे का नाम धर्मचंद था, वो आज भी होंगे, बोले उसके बाद बेटे ने संभाल लिया अपन तो दास में लूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसे लोग होते हैं इस प्रकृति के, और वे अपने को सबसे महान मानते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। क्यों? अब वो क्या कहते हैं, और जो कुछ मैं करता हूं मैं करता हूं, कर्तव्य के अभिमान में इतने चूर रहते हैं 24 घंटे, वे अपने को अप्रमाद ही कहते हैं। तो प्रमाद क्या अप्रमाद क्या, हमको ये समझना पड़ेगा। वो टीका में कार्य समझाएगा कि प्रमाद किसे कहते हैं और अप्रमाद किसे कहते हैं। तो अब कुंद कुंदल एक क्षण में तो प्रमाद ही हो, एक क्षण में अप्रमाद ही, समझे ना, समय समय में होता कि नहीं होता ऐसा। तो अंतर्मूत में आत्मा में जाना अनिवार्य है ही, और भाषण यदि एक घंटा चलता रहा तो बीच में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भाषण के बीच में आत्मा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं अप्रमाद, यानी वो तो शास्त्र में से समझ लेना, जैसे एक एक आदमी पे ऐसा ऐसा घटित करने की जरूरत एक एक मिनट की नहीं है, न उस रूप में देखने की तुम्हें जरूरत है। तो ना मजी ने तो कितने शब्द में लिखा, ये सातवें गुणस्थान के छठवें गुणस्थान में है, नमस्कार करने योग है कि नहीं हो। अरे नमस्कार तो व्यवहार का नाम है, बंद बंधक भाव तो व्यवहार है, वो तो छठवें गुणस्थान के ऊपर होता ही नहीं है। पर के साथ बंद बंधक भाव, नमस्कार करने का विकल्प, कराने का विकल्प, आशीर्वाद देने का विकल्प, ये तो छठवें गुणस्थान के ऊपर होता ही नहीं है। तो ये क्या निर्णय करना, तो वो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि मैं प्रमत अप्रमत नहीं हूं, इसलिए लिखा कि भी दोनों में आ जा रहे थे ना, तो लोग कहते थे ये प्रमत गुणस्थान वाले हैं अप्रमत गुणस्थान वाले हैं, तो वे कहते ना मैं प्रमत गुणस्थान वाला हूं ना मैं अप्रमत गुणस्थान वाला हूं, मैं गुणस्थान वाला ही नहीं हूं, मैं तो गुणस्थानातीत हूं। ये कहना चाहते जो है उसका निषेध करना चाहते। बनारसी दास ने क्या किया मालूम, इसका पद लिखा, ये उसने क्या लिखा, ना मैं ग्रस्त हूं और ना मैं जति हूं, ना ग्रस्त हूं ना जति हूं। उनने प्रमत अप्रमत नहीं लिखा, उनने लिखा मैं ग्रस्त भी नहीं हूं और जति भी नहीं। तो क्यों लिखा ऐसा, उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो श्वेतांबर मत में पैदा हुए थे, श्रीमाल जाति के थे, गुरुदेव भी श्रीमाल जाति के थे, वे भी श्रीमाल जाति के थे। ठीक 300 वर्ष बाद गुरुदेव का जन्म हुआ उनके, वे समय सार पढ़ के दिगंबर बने थे और गुरुदेव भी समय सार पढ़ के दिगंबर बने। तो जैसा उनका आचरण था, ख्याल में आई ना, वो श्वेतांबरों में यतियों का होता है, यति वहां के साधुओं को यति नहीं बोलते हैं, जैसे अपने भट्टारक होते हैं ना, ऐसे वो मंदिरों की व्यवस्था व्यवस्था देखने वाले लोग यति होते हैं, हैं तो वे साधु, जैसे अपने भट्टारक अपने को साधु भी कहते हैं और मुनि भी नहीं है, वो एक अलग ही कुछ है, जो कुछ भी है भगवान जाने, शास्त्र में तो कहीं कुछ है नहीं, भगवान महावीर को परम भट्टारक लिखा है और गौतम गणधर को भट्टारक लिखा है, अकलंक ने अपने को भट्ट लिखा है, भट्टाकलंक दे क्यों, अब भट्ट भट्टारक परम भट्टारक, अब अकलंग तो भट्ट हैं, वजह भट्टारक हो गया, क्या करें, गुड बेट बेस्टर होता है, गुड बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, आप समझे ना, तो भट्टारक माने बेटर, आप समझे ना, भट्ट माने गुड और परम भट्टारक माने बेस्ट, अब अकलंग है भट्ट, समझ गया वजह उनसे बेहतर है अपने यहां तो ये है सब। तो उनके यहां श्वेतांबरों में ऐसे जो रहते थे वो उन्हें यति बोलते थे, तो जो ऐसे कपड़े पहनते थे, रहते थे, देखते थे, सब करते थे, एक उनके ग्रुप के एक लीडर थे, तो इसलिए वहां उनको कहते थे बनारसी यति हो गया। वे कौन कहते थे, श्वेतांबर लोग और दिगंबर लोग, तो गृहस्थ ही मानते थे, जैसे अपने लोग है ना, क्या गुरुदेव को अपन लोग सब गृहस्थ ही मानते हैं ना, और हम सोनगढ़ गए जाते थे तो कहां जाना, रेलवे स्टेशन जाते, कांजी मुनि के आश्रम में, कहां भैया चल, हम उसे नहीं पढ़ाते थे कि मुनि मत कर, ग्रस्त बोल, नहीं तो वो आगम का विरोध हो जाएगा। क्यों? वो पूछते थे कहाँ जाना है? कांजी मुनि के आश्रम में। कहाँ? कांजी मुनि के आश्रम में। मेरे कहने का मतलब अपन जानते तो थे ना, तो वे अपने को ग्रस्त मानते थे, श्वेतांबर उनको यति मानते थे। तो वो कहते हैं ना मैं ग्रस्त हूं ना मैं यति हूं, माने ना मैं दिगंबर हूं ना मैं श्वेतांबर हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। और कुंद कहते हैं ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त। तो जो पर्याय उनकी थी वे उस पर्याय का निषेध करते हैं कुंद कुंद, और बनारसी दास की जो पर्याय थी वे उस पर्याय का निषेध करते हैं। उस दृष्टि के दृष्टि से बताते हैं कि ना मैं ग्रस्त हूं ना यति हूं, ऐसा लिखा है, पर देखना उनके उसमें। तो मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त नहीं हूं। तो ये दर्शनाचार्य ने इस प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ लिखते हुए ऐसा लिखा है कि प्रमत्त माने अकेला छठवां गुणस्थान नहीं, पहले से छठवें गुणस्थान तक उसका नाम प्रमत्त। और अकेले कोई उनने अर्थ किया ऐसी बात नहीं है, ये छह गुणस्थान प्रमत्तों के हैं। क्योंकि प्रमाद कितने प्रकार का होता है संजीव? 15 प्रकार का होता है ना। इंद्रिय तहा कहा था, विकहा तहा कहाया, इंद्रिय निद्रा तथा, कहते हैं चार विकथाएं, चार कसाएं, पांच इंद्रियों की अधीनता, निद्रा और स्नेह, ये 15 चीजों के मिक्सचर का नाम है प्रमाद। क्या बोलो? प्रमाद किसे कहते हैं? बोलो आलोक जी। इसमें 15 चीजें मिक्सचर हैं और ये तो 15 हुई और इनके भंग बनते हैं 80। कोमर सार में देखना, ख्याल में है ना? कैसे बन जाएंगे 80? कि चार विकथाएं और चार कसाएं कितनी हुई? 16 गुणा गुणन फल लगाओ 16, और पांच इंद्रियाधीनता तो 80 होगी ना, 16×5=80। और अब निद्रा उसने एक ही एक है, 80 में एक का गुणा करोगे तो क्या आएगा? और फिर जो गुणा फला है उसमें एक का गुणा करो तो क्या आएगा? क्यों ऐसा ही है ना? तो प्रमाद 80 तरह के भी होते हैं, 15 तरह के भी होते हैं, और वे नहीं हो उनको अप्रमत्त बोलते हैं। तो उसमें तो कसाएं भी आ गई, तो चार ही कसाएं आ गई ना। तो जिसको तुम अप्रमत्त गुणस्थान कह रहे हो संजीवन कसा तो है, तो पूरा अप्रमत्त का है वो। ठीक, इतना ज्यादा अप्रमत्त हो गया कि तीन कसाएं का अभाव हो गया, थोड़ा सा बाकी रह गया, कर्जा 2-4 रुपया का रह गया हजारों में, तो चुग गए ही मान लेते हैं। समझ गए ना आपके ना? तो ये प्रमत्त ये हैं जब तक प्रमत्त, और अभी ये नहीं है तो अप्रमत्त। तो नहीं है तो कसा तो 10 गुणस्थान तक जाती है, तो कसा का मिक्सर उसमें है, ख्याल में आई ना आपकी में? तो वो उसको गुण कर दो, वो उसे तो कसा उनने अलग लिखी ना। हाँ, मिथ्या तो वृत्ति प्रमाद कसाय अलग क्यों लिखी? क्योंकि अगर आप प्रमाद कह के छोड़ देते तो वो संतुलन कसाय का मामला नहीं आता। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 14 गुणस्थान हो गए प्रमत्त में पहले से 6, तो अकेले छठवें में तो संतुलन कसाय का तीव्र उदय है, लेकिन पहले में संतुलन उस कसाय का तीव्र उदय नहीं है। अरे तो अनंतानुबंधी का है, प्रत्याख्यान का है, प्रत्याख्यान का है सबका, ये तो महाप्रमत्त है ना, वो तो सबसे छोटा प्रमत्त है। तो उसके पहले के सारे महाप्रमत्तों को भी शामिल कर लो भी कहते हैं, और बाद में सातवां गुणस्थान अप्रमत्त है। अरे उसमें तो कसाय है, लेकिन वो 14 गुणस्थान तक वो अप्रमत्त हो गए, माने 14 ही गुणस्थान, यानी ऐसा कह के मैं गुणस्थानातीत हूं ये कहना चाहते हैं। मैंने कहा था बंद की कथा, अब कहते गुणस्थानों की कथा मत करो मेरे सामने, मैं गुणस्थान गुणस्थान मेरे में नहीं है। क्या नहीं है तुम में? क्या नहीं है? गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? कितने होते हैं? और क्या क्या नहीं है ये बताओ। क्या समझ गए ना? तो इसलिए लिखा है आचार्य उन्हें, बनारसी दास भी भ्रष्ट हो गए थे जब गोमर सार पढ़ाया रूपचंद जी पंडित ने, तब उनके अकल ठिकाने आई। तो क्योंकि वो ये पहले गुणस्थान क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, गुणस्थान आत्मा नहीं है ये पढ़ने के पहले गुणस्थान पढ़ना पड़ेगा, तो गुमट सार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समय सार पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। उसने बताया ये नहीं, जीव स्थान में नहीं हूँ, गुण स्थान में नहीं हूँ, मागना स्थान में नहीं हूँ, तो जो जो मैं नहीं हूँ वो क्या क्या मैं नहीं हूँ ये तो पता चले। क्यों? सामान्य जानकारी तो उसकी हो, तो इसलिए ऐसा लिखा बनारसी दास को कि वे ऐसे निश्चयभाषी हो गए थे समय सार पढ़ के, क्या एक कोठरी मां क्या पांचों आदमी एक मित्र थे, वो पांच पांच नाम गिना दिए थे उत्तमचंद जी ने, मैं नहीं बताऊंगा उन्हें, द्वितीय चतुर्भुज नाम और वो सब पांच मिलके एक कोठरी में बंद हो जाते थे और कपड़े खोल देते थे, नंगे हो जाते थे। तो आज के क्लब होते हैं ना वो भी ऐसे ही होते हैं नंगे के, और कहते थे कि हम मुनि हो गए। देखिए फिरे कोठरी माए नग्न हुए कर फिरे कोठरी माए, क्या बोलो बोलो भैया
कहने
नहीं। देखो सारों जने मिलकर कोठरी में बंद हो जाते थे, नंगे हो जाते थे, कहते थे हम मुनिराज हो गए और अब हमारे कोई परीक्षा नहीं है, बाहर निकलेंगे तो कपड़ा पहन लेंगे तो मुनिराज नहीं रहेंगे, प्रमत्ता प्रमत्त। ऐसा तो फिर एक पंडित रूपचंद जी थे, वो गौरव स्टार के विद्वान थे, और रूपचंद जी कौन रूपचंद जी, आप पूजा के तरह बोलते हो भणी रूपचंद सुदेव जनवर जगत मंगल गाही पंच कल्याण पंच मंगल बोलते हो ना, वो रूपचंद जी थे, उसके कर्ता रूपचंद जी थे। उन्होंने उन्हें गोमर सार पढ़ाया तब वो बैलेंस हुए, कौन बनारसी दास जी। तो इसलिए कहते अब स्पष्ट साफ दिख रही ना कि ये बताएंगे पूरा, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं, अभी शुरू की है, मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं, क्या क्या नहीं है, अब ऐसी ऐसी बात कहेंगे पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगेगी। अब अभी बता दूंगा तो फिर कल का मजा नहीं आएगा ना, जितना समय इसमें निकल जाएगा उतना इससे बढ़िया समय कोई आने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा समय की ज्ञान मत करो, समय इस समय का ज्ञान, इसलिए समय की बात चल रही उसका ध्यान रखो।